नमस्कार साथियों, आप सुन रहे छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी। छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी से मैं दिनकर पातुकर। आज 10 दिसंबर विश्व मानवाधिकार दिवस पर हमारे साथ छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी पर रूबरू होने जा रहे डॉक्टर अनूप सिंह सर जी। नमस्कार सर जी।
नमस्कार दिनकर दादा। नमस्कार
सर जी। आज संपूर्ण विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, आखिर यह विश्व मानवाधिकार दिवस मनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी?
विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाने की आवश्यकता इससे पड़ रही है, यह अपने आप में बता रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है। अगर व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता तो इससे मनाने की और इस प्रकार की कोई संगठन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर मानवता का हनन हो रहा है, अधिकारों का हनन हो रहा है, तो इसके पीछे भी तो मानव ही खड़ा है। अगर एक मानव दूसरे मानव के अधिकारों का शोषण कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का शोषण कर रहा है, उसके बदौलत ही तो ऐसी नौबत आ रही है कि संगठन बनाना पड़ रहा है या विश्व मानवाधिकार दिवस मनाना पड़ रहा है। जो भारत की कल्पना थी राम राज्य की, और दूसरी जो कल्पना थी वसुधैव कुटुंबकम की, और जो दुनिया का सबसे एक प्राचीन दर्शन है समाजवाद, जिसका पर्याय अपने को अर्थवेद में भी दिखाई देता है, जिसमें कहा गया है कि तारों भरे आकाश के नीचे सभी का समान अधिकार है, और उसमें जो शब्द प्रयोग होता है मैं नहीं हम, तो अगर इन तमाम बातों को अपना लिया गया होता दुनिया के अंदर, राम राज्य को अपना लिया गया होता, वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना को मान लिया गया होता, समाजवाद को मान लिया गया होता, तो ऐसी नौबत नहीं आती कि मानवाधिकार का हनन होता या मानवाधिकार मनाना पड़ता। परंतु आज हम एक तरफ आप देखिए कि विज्ञान के नाते हम तकनीकी युग में प्रवेश कर गए, हम नाना प्रकार के विकास कर रहे, हम अब धरती छोड़ करके अंतरिक्ष में रहने की कल्पना करने लगे, वहां तक पहुंच गए हैं, परंतु हमारे दिमाग में जो कचरा बैठा है वो कचरा नहीं निकल रहा है। आज भी समाज में नाना प्रकार की असमानता, भेदभाव, अशिक्षा, अस्वस्थता दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान के अंदर ही देख लीजिए कि एक व्यक्ति 50 रुपया काम करने पर मजबूर है, उसको 50 रुपये का काम नहीं मिल रहा है, और दूसरे तरफ एक व्यक्ति है जो प्रति मिनट 90 करोड़ रुपये कमा रहा है। ये तो सीधा सीधा बता रहा है दिनकर दादा, अधिकार संगठन बनाने या दिन मनाने से कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। जहाँ एक व्यक्ति खाने के लिए मर रहा है, दूसरा व्यक्ति खा करके मर रहा है, तो ये कहाँ से मानवाधिकार दिवस मनाने की कोई कल्पना ही नहीं रह जाती। मानवाधिकार दिवस मनाने का सार्थक परिणाम तो उस दिन निकलेगा जब एक बराबरी के समाज का निर्माण होगा, एक ऐसी दुनिया बनेगी, बनाने का प्रयास किया जाएगा जिस दुनिया में किसी प्रकार की असमानता न हो, जिस दुनिया में शोषण न हो, जिस दुनिया में शिक्षा और चिकित्सा सभी के मौलिक अधिकार बन जाएंगे, अवसर की समता सबके बराबर पहुंचने लगेगी, तब जाकर के समझ में आएगा कि मानवाधिकार दिवस मनाने की कल्पना है। दूसरा जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे मानवाधिकारवादी साथियों से भी हमको थोड़ा सा कष्ट है। ये मानवाधिकारवादी साथी सत्ता प्रेमी हो गए, अब वो भी ऐसा बना लिए है कि अब हमको सत्ता के खिलाफ नहीं बोलना है। कुछ कुछ ऐसा इशू आता है जैसे लगता है कि पूरे दुनिया में बहुत बड़े बड़े मानवाधिकारवादी हैं, खड़े हो जाते हैं, कभी पुरस्कार वापस करने लगते हैं, कभी किसी चीज का बायकॉट करने लगते हैं, उससे नहीं होता है। मानवाधिकार का रक्षा उस समय होगा जब आप आम जनता के पीड़ा को समझ करके, सत्ता की चपलूसी न करके, सत्ता बदलने का प्रयास न करके व्यवस्था बदलने का प्रयास करेंगे, तब जाकर के मानवाधिकार का रक्षा होगा। तो हमारे मानवाधिकार प्रेमी साथियों को यह चाहिए वो अपने कथनी और करनी में समता रखे, समानता
रखे। सर जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आज हम विश्व मानव अधिकार दिवस मना रहे हैं, यदि हम अपने ही क्षेत्र की बात करें
जी,
तो संसद क्षेत्र महाराष्ट्र सीमा से लगा हुआ है और यहाँ पर विविध कंपनियां भी है, लेकिन कंपनियों में काम करने वाले मजदूरों को, श्रमिकों को क्या उनका अधिकार मिल पा रहा है?
देखिए, आप मजदूरों को आजकल जो काम चल रहा है कंपनियों में, वो मजदूरों को 3-4 प्रकार की श्रेणियों में बांट दी है। उसमें देखा जाए तो थोड़ा सा इसके पीछे चला जाए, ऐसी नौबत क्यों आई है? ऐसी नौबत इसलिए आ रही है कि हमारी देश की जो सर्वोच्च संस्था है संसद, जो पूरे देश की मुख्य कार्यपालिका होती है, उसको चलाने वाले लोग कौन है? पहले अगर तय कर लिया जाए तो उसको चलाने वाले लोग कौन है, तो आज आप देखिए कि पार्लियामेंट को चलाने का काम दुनिया भर की कॉरपोरेट लॉबी कर रही है, भारत की कॉरपोरेट लॉबी कर रही है, पहला। दूसरा कि जो हमारा उच्च सदन है राज्यसभा, उसमें आप देखिए कि पैसे वाले पहुंचने लगे। पहले यह होता था दिनकर दादा कि राजनीति में कम पैसे वाले लोग पहुंचते थे, समाज सेवी पहुंचते थे, और जो पैसे वाले होते थे, जो व्यापारी वर्ग होता था, जो पूंजीपति वर्ग होता था, वह राजनीति में आने से डरता था, क्योंकि कभी कभार अगर चुनाव लड़ जाता था तो जनता उसको चुनाव हरा देती थी। इस नाम से चाहे ये पैसे वाला ही ऐसा काम नहीं करेगा, परंतु आज वो लोग राजनीति के सिरमौर बने हुए हैं और जनता उनको चुनाव जिता रही है। तो आज जो मजदूरों का शोषण हो रहा है उसके सबसे बड़ा जो कारण है कि वो हमारे देश की बदलाव करने वाली जो व्यवस्था है राजनीति, उसके पैसे वालों का कब्जा हो गया। जब पैसे वालों का कब्जा हो गया, उनकी सरकारें बनने लगी, उनके मंत्री बनने लगे, तो अपने हिसाब से नियम बनाने लगे। अब तो उन्होंने पार्लियामेंट से एक रेजुलेशन पास करा लिए है, लगभग 5-7 साल पहले की बात है, कि कंपनियों में कोई परमानेंट कर्मचारी नहीं रखा जाएगा। ये अपने आप में एक शोषण है। आप इतने बड़े उत्पादन कर रहे हो, इतनी बड़ी लगातार कंपनी चला रहे हो, और आप कह रहे हैं कि हम कर्मचारी को परमानेंट नहीं करेंगे, यह तो एक उनके अधिकार का शोषण है ना। और आप देखिए कि मैंने पहले बोला कि 3-4 प्रकार के कर्मचारी बना दिए हैं, कुछ को ठेका बना दिए हैं, कुछ को संविदा बना दिए हैं, कुछ को कंट्रेक्चुअल बना दिए हैं, और सबकी मजदूरी अलग अलग तय कर दिए। उसमें भी जो मजदूरी उनकी तय होती है 12 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए, 360 रुपये या 400 रुपया या कलेक्टर रेट तय होता होगा, उसमें भी जो ठेकेदार है वो अपनी मजदूरी निकाल लेता है, अपना मेहताना निकाल लेता है, अपना कमीशन निकाल लेता है, उसके बाद लेबर कमीशन का लेबर का जो कमीशन का जो अधिकारी होता है उसका कमीशन निकाला जाता है, कुछ कंपनी के अधिकारी होते हैं उनका कमीशन निकाला जाता है। तो इस प्रकार से काट पीट के उनको बहुत कम वेतन, लगभग 230-240 रुपया मिलता है एक मजदूर को। तो यह तो बहुत बड़ा शोषण है, और यह शोषण पूरे भारत में पूरे लोगों को लूटने का प्रयास किया जा रहा है। परंतु हम तो वही पहले भी कहे और अभी भी कह रहे हैं कि मजदूरों का संगठन कहाँ गया। तो मजदूरों के नाम पर संगठन चलाते हैं, 4-5 संगठन बनाए, कांग्रेस का भी संगठन है, भाजपा का भी संगठन है, कम्युनिस्टों का भी संगठन है, इन लोगों के संगठन कहाँ गए जो मजदूर संगठन के नाम पर राजनीति रोटियां सेकते हैं, क्यों नहीं लड़ते हैं, क्यों नहीं इनके साथ बोलते। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी कारपोरेट की चपलूसी करते हैं, कारपोरेट के साथ मिलकर के काम करते हैं और अपना जेब भरते हैं, उसका ही बहुत बड़ा कारण है जो अपने क्षेत्र में लूट का कारण बढ़ा हुआ है।
आशा जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश में सुनने को मिल रहा है कि पहनावे को लेकर भी राजनीतिक सोच बढ़ी अधिक गरीब सामने आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे आप पहनावे को लेकर?
देखिए, पहनावे को लेकर के इसमें महिला पुरुष का कोई है ही नहीं। आप भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 44 को पढ़ लीजिए तो कहता है कि सभी के लिए समान नागरिक संहिता होगी। तो इसमें पहनावे के लिए कोई है ही नहीं भाई, जिसकी जो इच्छा है पहनेंगे, लेकिन जो पर्टिकुलरली जो जगह है जहाँ पे वहां पे जाएंगे तो जो एक ड्रेस लगेगा उस ड्रेस को आपको पहनना चाहिए। वहां पे चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, यह नहीं कहना चाहिए कि हमारे धर्म में ये लिखा है पहनने के लिए, नहीं। वो संस्था आपको किस प्रकार से संचालित कर रही है उस हिसाब से चलिए। आज देख लीजिए कि पूरी दुनिया में हिजाब को लेकर के संघर्ष चल रहा है, पूरी दुनिया में। ईरान में महिलाओं की क्या स्थिति है, वहां की महिलाओं को कैद किया जा रहा है, उनके बाल काटे जा रहे हैं, उन पर गोलियां बरसाई जा रही है, लेकिन वहां की महिलाएं लड़ रही है कि हम हिजाब नहीं पहनेंगे, और कोर्ट भी उनके पक्ष में निर्णय दिया है कि पहनना नहीं पहनना इनके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो इस वैज्ञानिक युग में भी, इस प्रगतिशीलता के युग में भी कह रही कि नहीं, मैं हिजाब पहनना जरूरी है, ये लिखा हुआ है। अब बताइए, हिजाब पहनना, मुंह ढक करके चलना, यह तो मानवाधिकार का शोषण ही है, या कहां से मानवाधिकार का रक्षा कर पा रहे। तो इस सवाल पे मानवाधिकारवादी कहां है, इस सवाल पे मानवाधिकारी क्यों धर्मों में बट जाते हैं, कुछ लोग इस पक्ष के हो जाते हैं, कुछ लोग उस पक्ष के हो जाते हैं, जबकि हमारे भारत का संविधान कहता है कि नहीं, ड्रेस को लेकर के, पहनावे को लेकर के, भोजन को लेकर के, दिनचर्या को लेकर के किसी प्रकार का वर्जिश नहीं है। वर्जिश है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के धारा और कानून को पालने के और नहीं पालने को लेकर के। परंतु आज तो दुनिया के अंदर यह पुरुष वर्चस्ववादी समाज कह लीजिए, वह नहीं चाह रही है कि हिजाब प्रथा खत्म हो, वो चाह रही है कि महिलाएं आज भी पर्दा में रहे, आज भी वो हिजाब पहने, जिनसे उनका शोषण होता रहे, जिनसे वो दुनिया को न देख सके और पुरुष का अपना वर्चस्व बना रहे। तो इससे मानवाधिकार का रक्षा नहीं होगा। मानवाधिकार का रक्षा तो इस समय होगा जब उनको स्वतंत्र रूप से जीने की आदत डालनी होगी, स्वतंत्र रूप से जीने दिया जाएगा और उनको स्वतंत्र खुले वातावरण में हवा लेने दी जाएगी, सांस लेने दी जाएगी, तब जाकर के मानवाधिकार का रक्षा हो सकता।
सर जी, एक आपसे अंतिम प्रश्न, जैसे कि आपने अपने बातों बातों में शिक्षा पर विशेष जोर दिया, जिस समय सरकार उन ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में शालाएं खोलने में असमर्थ थी, ऐसे समय में स्वयंसेवी संस्थाओं ने शालाएं खोली। आज वो शाला बंद होने की कगार पर आ गई है। जो शाला थी वहां पर नई शिक्षक भर्ती पर रोक लगी हुई है, और हम देख रहे हैं कॉलेजों में और हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में भी, आपने अपने शब्दों में कहा है, यहाँ ग्रेड बटी हुई है। संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, परमानेंट शिक्षक और उनके मानदंड में भी बहुत सा बदलाव है,
अंतर है,
अंतर। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, यह तो दो बात है, पहला शिक्षा और चिकित्सा, यही दो ऐसे क्षेत्र है जो सेवा के क्षेत्र में, और भारत का हमारा संविधान भी कहता है कि यह सभी लोगों को दिया जाएगा। मैं देश भर के स्वयंसेवी संस्थाओं को बधाई देना चाहता हूँ मानवाधिकार दिवस पे, कि उन्होंने देश भर में अपने संसाधनों पे उस समय शालाएं खोले, उस समय स्कूल खोले जब सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं होती थी, परंतु सरकार के पास जब व्यवस्था आई तो सबसे पहले आक्रमण उन्हीं के ऊपर करने का काम किया और उनको तोड़ने का काम किया। तोड़ना इसलिए किया, उनका ग्रांट देना बंद कर दिया। तोड़ना इसलिए किया, उनके सुविधाओं के नाम पर उनको तरसाना शुरू कर दिया। यह तो सरकार की एक बहुत बड़ी चाल है। चाल इसलिए मैं कह रहा हूँ, यह षड्यंत्र है, क्योंकि सरकार नहीं चाह रही है कि शिक्षा सभी के पास पहुंचे। आज शिक्षा में 80% आप देख लीजिए, यानी 10वीं तक के शिक्षा में निजीकरण का प्रवेश हो चुका है, और निजीकरण के प्रवेश के बाद क्या हो रहा है, शिक्षा इतनी महंगी हो जा रही है कि देश के 80% लोगों से शिक्षा धीरे 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 बाहर होती जा रही है। यह तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने नागरिकों को किस प्रकार से शिक्षित करें। उसको चाहिए था कि सरकारी स्कूलों को सही रखे। आज सरकारें कर क्या रही है दिनकर दादा,
हाँ,
एक सरकारी स्कूल, बढ़िया सरकारी स्कूल बनाने के नाम पर 5 स्कूलों को बंद कर दे रही। ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश भर में हम 15,000 सैनिक स्कूल खोलेंगे, लेकिन उसके आड़ में उन्होंने 1,00,000 सरकारी स्कूल देश भर में बंद कर दिए। और आप जैसा बता रहे हैं स्कूलें बंद होती जा रही है, इस प्रकार से हर साल लगभग लगभग 10 से 20 हजार स्कूलें बंद होती जा रही है। आदिवासी गांवों की आज भी कंडीशन ये है, खासकर मध्य प्रदेश के इलाका में, कि जो आदिवासी गाँव बहुत अंदर बसे हुए है वहां पहुंचने का रास्ता नहीं है। अगर उसके बीच में नाला आ गया तो उस नाले पर पुलिया नहीं बनी हुई है, वहां तक कोई सरकार की सुविधा नहीं पहुंच रही, वहां पे साधन नहीं है, तो बच्चे कैसे दूर जा करके पढ़े। उन बच्चों के लिए तो चाहिए कि उस स्कूल में, उस गांव में ही स्कूल हो, पर तो सरकार यह नहीं कर रही, क्योंकि सरकार का मकसद है शिक्षा को निजीकरण के तरफ भेज दिया जाए, और दूसरी तरफ जो वंचित वर्ग है उसको वंचित वर्ग में ही रखा है। वो नहीं चाह रही खोलकर के समता सब तक पहुंचे। अगर तीसरी सवाल वेतन विसंगति लेकर के, तो आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए कि कितने प्रकार के शिक्षक स्कूल में, अतिथि शिक्षक है, शिक्षा मित्र है, गुरुजी है, और कॉलेजों में अतिथि विद्वान है, कई प्रकार के नाम देकर के चलाते हैं, और पेमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं है। हर साल दोनों की सत्ता आती है। मध्य प्रदेश की एक और विशेषता है, यहाँ पे दो ही दलों का राज चल रहा है, जबकि दोनों में सिद्धांत नहीं है, दोनों में भाजपा और कांग्रेस। भाजपा भी आती है तो बड़े बड़े वादा करती है, कांग्रेस भी आई तो वादा की लेकिन वादा को पूरा नहीं किया। तो ये दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं एक प्रकार से शोषण का रास्ता अपनाए हुए है, और वहाँ के प्राध्यापकों का शोषण करते हैं, मास्टरों का शोषण करते हैं, और किसी को आश्वासन देते हैं, उनके भविष्य को सुनिश्चित नहीं करते। तो जब मास्टर का ही भविष्य सुनिश्चित नहीं है तो उसके विद्यार्थियों का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा, यह भी एक सवाल है। तो आज तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर भी एक प्रकार से शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर लूट मची है। यह दोनों क्षेत्रों को निजीकरण के तरफ भेजने का प्रतियोगिता चल पड़ा है। तो मानवाधिकार की अगर रक्षा करना है तो शिक्षा और चिकित्सा को फ्री करना होगा, निशुल्क करना होगा। और दूसरी जो बात है कि मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में 10वीं तक अनिवार्य किया जाए कि 10वीं तक का विद्यार्थी भारत का संविधान पढ़ेगा और उस पर एक उसका पेपर होगा। अगर भारत का संविधान पढ़ लेगा तो उसके कहीं ना कहीं मानवाधिकार में जो शोषण हो रहा है उसमें गिरावट आएगी और वह जागरूक भी बन जाएगा। तो मानवाधिकार को अगर बताना है तो विज्ञान के साथ साथ हमें भारत के संविधान को भी पढ़ाना है, और उसके साथ साथ दिमाग के कचरे को भी निकालना है, आडंबर को रोकना होगा, अंधविश्वास को रोकना होगा, अंधकार को रोक करके प्रकाश की रोशनी फैलानी होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने विश्व मानवाधिकार दिवस पर छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के मंच से महत्वपूर्ण संदेश छिंदवाड़ा मोबाइल वाणी के श्रोताओं के लिए दिया। आज विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर छिंदवाड़ा एवं मध्य प्रदेश मोबाइल वाणी की ओर से समस्त प्रदेश एवं देशवासियों को बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं।
धन्यवाद।